बाज़ मुफस्सरीन ने बहुत खूबसूरत कंपैरिजन किया है इन्हीं आयात का, ये जो यहाँ पर दो तीन आयात समुन्दर से रिलेटेड आई हैं, और मुसलमानों की बहुत सी नेमतों का। वो कहते हैं नंबर एक, जब अल्लाह ताला ने डेकोरेशन की चीज इतनी अच्छी बनाई है, पर्ल्स, तो अल्लाह जो कि अहसनुल खालिकीन है, उसने इंसान की जरूरत की भी जो चीज बनाई है वो भी खूबसूरत बनाई है। फलों को याद कर लें, फाकिया हमने पढ़ा था, अल्लाह ने फल हमें ऐसे नहीं दे दिया, टेट्रा पैक में पड़ा हुआ है, दरख्त पे लगा हुआ, जाओ जाके तोड़ लो, पीना है तो पी लो, या वो बस दफा प्लास्टिक की थैली में नहीं जूस डाल देते, पता चला थैली लटक रही है दरख्त से, जिसने ऑरेंज जूस पीना जाके पी ले, नहीं, अल्लाह ने जरूरत की चीज को भी खूबसूरत बनाया है। सो द पॉइंट नंबर वन क्या है, जब अल्लाह ने खूबसूरत चीज जीनत का सामान बनाया ताकि इंसान उसको देखे और खुश हो, तो जो अल्लाह ने जरूरत के तौर पर अपना कलाम दिया है कुरान, वो कितना खूबसूरत होगा, उसमें कितनी गहराई होगी, समझने वाले को समझ आएगी। दूसरा पॉइंट, वो कहते हैं जब इंसान दुनिया की जीनत को, जरूरत नहीं है, दुनिया की जीनत को इकट्ठा करने के लिए या हासिल करने के लिए समुन्दर की डेप्थ में चला जाता है, इतना कि उसकी तह में पहुंच जाता है, तो फिर वो अल्लाह के कलाम को जो कि उसकी जरूरत है उसके लिए डेप्थ में नहीं जाएगा, उस पर वक्त नहीं लगाएगा, उसको टाइम नहीं देगा। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट था जब आपकी जीनत की चीज इतनी खूबसूरत है तो अल्लाह ने जो जरूरत का कलाम आपको दिया है यानी कुरान, वो कितना खूबसूरत होगा। दूसरा पॉइंट ये था कि जब आप अपनी जीनत को तलाश करने के लिए, यानी कि अगर आपको जिंदगी में पर्ल्स ना भी मिले तब भी आप जिंदा रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तब भी आप मुस्कुरा सकते हैं, जरूरी थोड़ी है सिर्फ पर्ल्स पहनने वाला मुस्कुरा सकता है, पर्ल्स के बगैर भी मुस्कुराते हैं, अल्लाह आप तो मुस्कुराना ही भूल गए, जी हाँ, पल्स के बगैर भी मुस्कुराते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो जब अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये क्रेविंग रखी है कि इंसान अपनी डेकोरेशन को हासिल करने के लिए इतनी एफर्ट करता है और समुन्दर की डेप्थ में जाता है, तो कुरान जो अल्लाह ने इंसान की जरूरत रखी है, इंसान को चाहिए उसकी भी डेप्थ में जाए, उस पर वक्त लगाए, उसको टाइम दे। तीसरा फैक्टर, जब इंसान अपनी जीनत को एडॉप्ट करने के लिए, लग्जरी को एडॉप्ट करने के लिए, अपनी डेकोरेशन को हासिल करने के लिए इतना पैसा खर्च करता है, पर्ल सस्ते होते हैं महंगे होते हैं, जब इंसान अपनी जीनत के लिए इतना माल खर्च करता है तो जरूरत पर खर्च करना बनता है। दीन आपकी जरूरत है, बाज लोग बहुत नाराज होते हैं, फर्ज करें हम कर नहीं रहे, अल्लाह ना करे हम कभी ऐसा करें, हमने आपको यहां बुलाया, हम कहते हैं अगर आपने हमारा रमजान का प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आपको टिकट लेनी होगी, बाज लोग बहुत नाराज होते हैं, हम नहीं ले रहे प्लीज, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह खर्च करने वालों को मजीद वसत दे। लेकिन एक बात है, जब हम 15,000 का जोड़ा पहन सकते हैं, और वो 15,000 का जोड़ा कितने महीने चलता है, मैंने तो महीने बोला था, 3 दफा पहनने के बाद चौथी मर्तबा में आप खड़े होकर अलमारी में देख रही होती हैं वो सामने लटका हुआ, आप कहते हैं कुछ है ही नहीं पहनने के लिए। 15,000 का जोड़ा हम खरीदते हैं, वो हमारे पास कोई एक एक जोड़ा नहीं होता, हमारी अलमारियों में एक एक जोड़ा लटक रहा है, एक सुबह का, एक शाम का, एक रात का, और एक कल का और एक आज का, इतनी नेमतें हैं, इतनी नेमतें हैं कि हमें खुद शर्म आ जाए, मैं खुद कभी कभी ये काम नहीं करती, मैं बोल रही हूँ, सर्च करें, मैं आज का होमवर्क हम सब एक रखे हैं, जाके अपने अपने जोड़े गिनते हैं कितने हैं, सिर्फ जो सामने की अलमारी में मौजूद है, मुझे मत बताइएगा, मैं भी आपको नहीं बताऊंगी। एहसास होना हमें, जब हम दुनिया पर इतना खर्च करते हैं तो दीन पर भी खर्च करना सीखे। एक दिन पर खर्च किया जाता है मिसाल के तौर पर इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में जाकर, कोर्सेज लेकर, फीस देकर, उसमें कोई आपको एम्बेरसमेंट नहीं होनी चाहिए, आपका क्या ख्याल है, यहां हम बैठे हुए हैं इस वक्त, फर्ज करें इस वक्त एसी ना चल रहा होता हम सबकी क्या हालत हो रही होती, फर्ज करें हमने आप सबको चटाई पर बिठाया होता आधी कौम भाग चुकी होती, कंफर्टेबल कुर्सी, सोफा, ऑलमोस्ट एसी एनवायरनमेंट, आपका पूरा एम्बियांस एक कंफर्टेबल एम्बियांस, तो दीन के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए। तो दीन पर खर्च करें इल्म हासिल करने के लिए, प्लस दीन को फैसिलिटेट करें। स्कॉलर्स कहते हैं कि दीन के इल्म हासिल करने वाले लोग हमेशा से, सारी बातें पूरी जिंदगी तो इल्म हासिल नहीं कर सकते, अल्लाह ने हर तरह का इंसान बनाया ना, बास लोग जो हैं वो दीन की खिदमत करते हैं, बाज लोग दीन की फैसिलिटेशन करते हैं, बाज लोग दीन के ऊपर खर्च करते हैं, बाज लोग दीन को प्रमोट करने के लिए खर्च करते हैं। तो जब हम अपनी जीनत पर इतना खर्च करते हैं तो दीन हमारी जरूरत है, इसके ऊपर हम खर्च करना शुरू करें। अगला पॉइंट जिसको स्कॉलर्स मेंशन करते हैं वो ये कहते हैं कि जब दुनिया की जीनत के लिए मेहनतें करके इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, अभी आपको बताया कल्चर्ड आर्टिफिशियल पर्ल्स कैसे बन रहे हैं, 25 साल तक चाइना कोशिश करता रहा तब जाकर सक्सेसफुल प्रोडक्शन अब उनकी शुरू हुई है। जब जीनत के सामान के ऊपर इतनी इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती हैं तो दीन का काम खूबसूरती से, ऑर्गेनाइज तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से क्यों नहीं किया जा सकता? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये आज की जरूरत है, होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग दीन के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट हो। अगला पॉइंट, जब लोग इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, या समझ लें पर्ल इंडस्ट्री लगाने के लिए ही आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, जीनत को बढ़ाने के लिए ही कौन कौन से ऑप्शंस लोगों को दिए जाएं, इस मैदान में बिजनेस इंडस्ट्री आगे से आगे बढ़ रही है, तो जरूरत का काम नेकियां हैं। नेकियों में क्यों ना एक दूसरे से कंपीट किया जाए? यकीनन इसमें जेलेसी नहीं होगी, यकीनन इसमें एक को दबा उसके उसको नीचे दबा के उसके कंधों पे खड़े होके, उसके सर पे खड़े होके आगे बढ़ने की बात नहीं होगी। कुरान के उसूल के मुताबिक वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, कंपटीशन कीजिए, नेकी का मैदान खुला है। जहां जीनत एडॉप्ट करने के लिए उसका जोड़ा इतना अच्छा था, देखना मैं अगली पार्टी में इससे भी अच्छा जोड़ा पहन के जाऊंगी। दुनिया में जीनत एडॉप्ट करने में इतने मुकाबले हैं, तो नेकियों में आगे बढ़ने में मुकाबले क्यों नहीं है? उसने एक कोर्स किया, मैं एक कोर्स के बाद एक और कोर्स करूंगी। ये तो हम नहीं कहते, हम कहते हैं लो एक कोर्स कर लिया, जिंदगी भर का हमने एहसान कर दिया दीन के ऊपर, नेकियों में भी आगे बढ़ा जाए। अगला और आखिरी आखिरी पॉइंट, जब जीनत का सामान अल्लाह ने एक्सेसिवली दुनिया को दे दिया है, अभी आपको बता दिया कि कोई पर्ल्स की कमी नहीं है दुनिया के अंदर जिस रेफरेंस में हम इस वक्त बात कर रहे हैं, और अब आर्टिफिशियल प्रोडक्शन के बाद कंपटीशन और बढ़ता जा रहा है, तो जब अल्लाह ने दुनिया में जीनत का सामान एक्सेसिवली दे दिया है, वो जो इंसान की जरूरत है अल्लाह ने उस पर इजी एक्सेस नहीं दिया होगा? बिल्कुल दिया है। ये कलाम जो आपकी और मेरी जरूरत है, इस पर हर इंसान को इजी एक्सेस है, बस इसका एक मिजाज है। आप घर में इसको खोलकर पढ़ने बैठ जाएंगे ये वैसा असर नहीं करेगा। इसको सुना जाता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिब्राइल अलैहि सलाम से कुरान का सुनना वाज कम्प्लीटली एन ऑडियो एक्सपीरियंस। आप सुनते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा का कुरान को सुनना, वो कोई रिटन किताब लेकर नहीं आते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सुनाया करते थे, दैट वॉज कम्प्लीटली एन ऑडियो एक्सपीरियंस। कुरान का मिजाज है ये सुनकर दिल पर असर करता है, आप सुनते हैं तो ये आपके कानों से आपके दिल के तार को छेड़ देता है। बाज दफा इट्स नॉट मुनासिब कि आप कुरान पढ़ते हुए बहुत ज्यादा हिलें, इसलिए कि स्कॉलर्स इसको अदब के खिलाफ कहते हैं। बहरहाल बाज लोग हिलते हैं, मुझे हमेशा इसमें फीलिंग्स आती हैं ट्यूनिंग फोक की। ट्यूनिंग फोक पता है ना, वाइब्रेशन, अगर आप उसको किसी जगह पर जोर से मारे उसके बाद वाइब्रेट करता रहता है। मुझे हमेशा फीलिंग्स आती हैं जब लोग नमाज पढ़ते हुए या कुरान पढ़ते हुए हिल रहे होते हैं। दिस इज अ फिजिकल इम्पैक्ट कि जब आप अल्लाह के कलाम को अपनी जुबान से अदा करते हैं या आप सुनते हैं, तो ये आपके दिल के अंदर एक वाइब्रेशन पैदा कर देता है। वो कौन सी वाइब्रेशन? ऐसे नहीं होता तो आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई, पता चला पेल्पिटेशन हो रही है, नहीं, दिस इज योर वर्चुअल स्पिरिचुअल हार्ट। आप देखें फिजिकली भी हमारा दिल हैंग्ड है ना, हमारे रिब्स के दरमियान में, रिब केज में हैंग हुआ हुआ है, तो इसमें एक वाइब्रेशन होती है। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन ज्यादातर स्कॉलर्स कहते हैं अदब है कुरान का कि जब इसको सुना जाए या जब इसको पढ़ा जाए तो बिल्कुल एक स्टैंड स्टिल पोजिशन पर रहा जाए, इसलिए कि सहाबा का यही तरीका होता था। तो अल्लाह ने इस कलाम को, जो कि जरूरत है, इजी एक्सेस दिया है हर इंसान के लिए। इसको सुनिए, आप सुनेंगी तो आपके दिल पर असर होगा। इसको इजी एक्सेस दिया है कि माँ इसको अपनी औलाद को समझाए। आज माँ ये कहें कि बच्चे दीन की बात सुनने को तैयार नहीं है, नहीं, बच्चे तैयार होंगे अगर हमारा तरीका दुरुस्त होगा। बच्चे आपकी और मेरी बात सुनेंगे अगर हम बच्चों से मोहब्बत के साथ बात करेंगे। दो जुमले हम बोलते हैं दीन के, अगर वो हमें आगे से कोई भी बैक आंसर करते हैं, तीसरे जुमले पर हमारा बीपी जो है वो शूट कर जाता है और फिर हम उन पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। असल में तुम जिन दोस्तों के साथ रहते हो ना, उन्हीं ने तुमको ऐसा कर दिया है। और बच्चे के दोस्त उसके दी फेवरेट होते हैं, आपसे ज्यादा टीनेज में बच्चे को अपने दोस्त अच्छे लगते हैं। मान जाएं इस हकीकत को अब आप। हाँ, ज्यादा रोने धोने की इस बात पर जरूरत नहीं। आ पाला मैंने, जागी मैं, इतना कुछ किया, डायपर भी बदला। हाँ हाँ सही बात है, अब टीनेज में मैं थोड़ी अच्छी लगूंगी। एक तो सब ड्रामा क्वींस है ना, विद इन सेकेंड्स हम लोग ड्रामा क्वींस बन जाते हैं। इट्स अ फैक्ट, टीनेज में आपको भी यही होता होगा। अब आपको याद नहीं है तो वो अलग बात है। टीनेज में फ्रेंड्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, माँ बाप अच्छे नहीं लगते। तो आप कभी भी अगर दीन की बात अपने बच्चों को बताना चाह रहे हैं और आपका बच्चा सुनने को तैयार नहीं है, ये मैं आपको उसूल बता रही हूँ, ऐसे मौके पर उसके फ्रेंड्स को ब्लेम मत करें। उखड़ जाएगा बिल्कुल बच्चा आपका, सुनने को तैयार नहीं होगा आपकी बात। तो हिकमत पहले खुद सीखें, फिर अपने बच्चों को दीन का इजी एक्सेस दें। अल्लाह ने हमारी जरूरत की चीज को बेहतरीन तरीके से रखा है। आखिरी बात इस आयत के रेफरेंस से, जो बात है कॉरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मरजान मरजान के अल्फाज जो हैं वो यहां पर आए हैं, इसके अंदर एक बेहतरीन अल्लाह की आपको जो है वो शान नजर आती है जब आप कॉरल्स पर बात करते हैं। कॉरल्स के लिए कहा जाता है, इन अ साइंटिफिक वर्ल्ड वो कहते हैं दीज आर सीक्रेट सिटीज ऑफ द सी, इसलिए सीक्रेट सिटीज ऑफ द सी। कॉरल्स जो हैं वो बिलियन ऑफ बिलियन साल पुराने भी हैं, और कॉरल्स के लिए कहा जाता है कि जो सबसे पुराना कॉरल रीफ है, सबसे पुराना, वो 450 मिलियंस पुराना है, डायनासोर से भी पुराना है। डायनासोर्स के लिए साइंटिफिक कहते हैं डायनासोर 240 मिलियन साल पहले थे, और ये जो ओल्डेस्ट कॉरल रीफ्स हैं जिनको साइंस ने डिस्कवर किया है, उनकी स्टडीज के मुताबिक ये 450 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। इस वक्त जो ग्रेट बैरियर रीफ है जिसको देखकर उन्होंने अपने लंदन म्यूजियम, लंदन साइंस म्यूजियम में कॉरल रीफ्स को नाम दिया था सीक्रेट सिटीज ऑफ द सी, उसको जब इन्होंने पूरे का पूरा डाइसेक्ट किया कि इसके ऊपर कितना कुछ आबाद है इस कॉरल रीफ पर, तो जो ग्रेट बैरियर कॉरल रीफ है उसके ऊपर उन्होंने 400 स्पीशीज ऑफ कॉरल्स देखे, 1500 स्पीशीज ऑफ फिशेस देखे, 4000 स्पीशीज ऑफ मॉलस्क देखे और 6 स्पीशीज ऑफ टर्टल देखे। कॉरल रीफ की ये बायोडायवर्सिटी है, एक पूरा शहर होता है छोटा सा जिसके ऊपर आके, कॉरल इज अ काइंड ऑफ यू कैन से एन एनिमल, जो उसके ऊपर जमा होने शुरू हो जाते हैं और फिर वक्त के साथ साथ कॉलोनीज बनाई जाती हैं और फिर ये पूरे पूरे शहर आबाद हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसके अंदर बड़ा कुछ रखा है। आज मेडिसन इन कॉरल्स के ऊपर, कॉरल एक्सट्रैक्ट के ऊपर इतना काम कर रही है और इनसे मुख्तलिफ बीमारियों के ट्रीटमेंट्स के लिए मेडिकल एक्सट्रैक्ट हासिल किया जा रहा है, चाहे वो कैंसर हो या आर्थराइटिस हो या एस्मा वगैरह हो, इस कॉरल रीफ्स के एक्सट्रैक्ट्स में बहुत बेनिफिट्स हैं। आईएमएफ के एक रिपोर्ट के मुताबिक कॉरल रीफ प्रोड्यूस अ ग्लोबल वैल्यू ऑफ 5.7 मिलियन पाउंड ईच ईयर। अल्लाह ने उन नेमतों का जिक्र किया है जो नेमतें अल्लाह ने इंसान को दी थी ताकि इंसान उनको हार्नेस करे, दुनिया को रहने की बेहतर जगह बनाए और खालिक को ना भूल जाए। तो हर आयत के अंदर आपके और मेरे लिए बहुत कुछ मौजूद है। यही कॉरल रीफ्स हैं जिनके लिए कहा जाता है समुन्द्र की दुनिया में 95% कॉरल रीफ्स होते हैं जो वेव एनर्जी को ब्रेक करते हैं सुनामी से बचाने के लिए किसी जगह को। अल्लाह का निजाम इतना प्रिसाइज चल रहा है कि अल्लाह ने जिस मखलूक को जो काम दे दिया वो उससे आगे पीछे नहीं होते, सिवाय दो मखलूकात के, इंसान और जिन, जो अल्लाह की हुदूद से रस्सी छुड़ा छुड़ा कर निकलते जाते हैं। तो ये नेमतें हैं जो अल्लाह ने जीनत के सामान में छुपा कर रखी हैं। जरूरत के सामान में इससे कहीं ज्यादा नेमतें होंगी। अल्लाह ने कह दिया, फबी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान, आयत नंबर 23, तो तुम कौन कौन सी अपने रब की नेमतों का इनकार करोगे। फायदा उठाओ इन नेमतों से और अपनी जिंदगी की मोहलत को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करो।